मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 26 जून 2018 है और आज के इस afis.com के मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं उमेश कुमार गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फर हमीद सोहिल बनिहाल जम्मू कश्मीर से, नलिन खुर्ब नोएडा उत्तर प्रदेश से, पंकज के पाटिल नासिक महाराष्ट्र से, वैभवी मूले उज्जैन मध्य प्रदेश से, आशु आपका गांव है पारलू जिला बाड़मेर राजस्थान से और अभिषेक कुमार आपका गांव है बहोरखा जिला वैशाली बिहार से। तो उमेश मुजफ्फर नलिन पंकज वैभवी आशु और अभिषेक आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने आपसे सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में कुछ बातें की थी और उसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आपको अनुमान लगाने की अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा प्री के लिए और आप अपनी तरफ से प्रश्नों को लिख सकें यह क्षमता आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी मेंस के लिए। ये बात मैंने आप लोगों से कही थी और उसको लेकर के कुछ मेल मुझे मिले हैं और उन्होंने जानना चाहा है कि सर इसको करें कैसे। मुझे लगता है कि ये जो आपकी जिज्ञासा है और ये जो प्रश्न है ये 24 कैरेट सोने की तरह बिल्कुल खरा है, क्योंकि कहना तो बहुत आसान है कि आप ऐसा कीजिए लेकिन ऐसा करें कैसे और हो कैसे ये बताना टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। मित्रों फिलहाल तो देखिए मैं केवल आपको दो उपाय बता सकता हूं जो मेरे पास हैं, अदरवाइज उपाय बहुत से हैं उनकी आपको तलाश करनी होगी। मेरे पास जो दो उपाय हैं उसमें से एक उपाय वही है जिसके तहत मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, यानी कि डेली ऑडियो लेक्चर। पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि मैंने अब डेली ऑडियो लेक्चर के फॉर्मेट में थोड़ा सा परिवर्तन किया, उस तरह के फॉर्मेट में नहीं, सिस्टम ऊपर से ढांचा आपको बिल्कुल वही दिखाई दे रहा होगा लेकिन माइक्रो लेवल पर मैंने चेंजेस किए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ स्टूडेंट ने इन परिवर्तनों को पहचाना भी है, पकड़ा भी है और उसके बारे में लिखा हुआ है। सच पूछे तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इन बारीकियों को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं अब किसी टॉपिक को लेकर के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन के बेस पर जानकारी नहीं देता कि सूचनाएं मैं केवल आपको बता दूं, उस पर बात नहीं करता, वो तो होते ही हैं लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी जो ट्विस्टिंग है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी मैं बात करता हूं। डेली मैं न्यूज के बारे में आपको बता रहा हूं कि रेडियो न्यूज और डीडी न्यूज है उनमें कौन सी न्यूज महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है और उसमें फिर मेरा ये भी एडिशन होता है कि आप इसे किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से आप इसे तैयार करेंगे। तो मित्रों एक तरीका तो ये है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए जो दूसरा तरीका है और डेफिनेटली वो क्लासेस का तरीका है और सच पूछे तो क्लासेस की जो व्यवस्था हम लोगों ने 15 दिन की जो की है वो इसी उद्देश्य से की है। देखिए अब जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई जादू हो जाएगा, नॉट एट ऑल। बहुत विनम्र भाव से हम लोग ये कहते हैं कि आपको यह बताया जाएगा 15 दिनों में कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की कैसे जानी चाहिए और जब तैयारी की बात करते हैं तो बट नेचुरल है कि उसमें सबसे बड़ी तैयारी तो पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए उसकी बात होती है। सिविल सर्विस के लिए जब आप पढ़ते हैं सिलेबस वही है, किताबें भी वही हैं लेकिन जो पढ़ने का ढंग है वो डिफरेंट होता है। या तो वो डिफरेंट ढंग आपको मालूम है और अगर मालूम नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों उसके लिए 15 दिन की क्लासेस हम लोग लगाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यह आपकी अपनी च्वाइस है। अदरवाइज मुझे ये भी लगता है कि अगर आप लगातार डेली ऑडियो लेक्चर से जुड़े रहेंगे लेकिन वहां उसमें बताए गए तरीकों का उपयोग करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे तो काफी कुछ सीमा तक आपको मदद डेफिनेटली मिलेगी, लोगों को मिलती है। ईमेल के जरिए स्टूडेंट इस बारे में सूचित भी करते हैं। ये बात अलग है कि संकोचवश या जानबूझ करके हम लोग उस तरह के मेल से आप लोगों को लगातार अवगत नहीं कराते हैं, है ना, वो एक हम लोगों की अपनी एक पॉलिसी है। तो मित्रों, हाँ, ये जरूर है कि अगर आप डेली ऑडियो लेक्चर के साथ क्लासेस को मिला देते हैं तब फिर उसी का जो प्रभाव है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रों, च्वाइस आपकी है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी बात को आधे अधूरे रूप में नहीं छोड़नी चाहिए और इसके बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए। दोस्तों, आज के न्यूज एनालिसिस में मैं वैसे तो हिंद महासागर पर आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, हिंद महासागर, लेकिन इसी के माध्यम से मैं कुछ दूसरी बातें भी आपसे करने जा रहा हूं, और वो भी जो बात है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी से ही संबंधित है। लेकिन डायरेक्ट मैं तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूज के माध्यम से प्रैक्टिकली आपको तैयारी के लिए बता रहा हूं। देखिए आप, मैं अब सारे न्यूज है ना, आपके रेडियो न्यूज है, आपके डीडी न्यूज है और आपके अखबारों की जो खबरें हैं उनको मिला करके एक साथ अपनी बात रख रहा हूं। मित्रों, जब आप अपना सिलेबस देखते हैं, सिलेबस आपके दिमाग के बहुत क्लियर होना चाहिए, पूरा सिलेबस क्लियर होना चाहिए, एक साथ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अखबार पढ़ेंगे और न्यूज सुनेंगे तो ऐसा थोड़ी कि न्यूज सुनने और अखबार पढ़ने के बाद आप सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी जरूरत क्या है। आप जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको मालूम है ना कि आप क्या क्या खरीदेंगे। ये थोड़ी कि दुकान में जाकर के आप देखेंगे कि तब डिसाइड करेंगे कि अच्छा मैं ये खरीद लूं। ये बात अलग है कि आपको कोई नई चीज दिख गई, आप भूल चुके थे तो खरीद लेंगे, अदरवाइज आपके दिमाग में चीजें होती हैं। सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जब आप जनरल स्टडी सेकेंड पेपर को देखते हैं मेन्स में, तो उसमें आपको मिलता है भारत के पड़ोसी देश, उसके साथ संबंधों को लेकर के आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। क्योंकि जब आप अनसॉल्व पेपर में देखते हैं तो पाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के तहत जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के संबंधों के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो देखिए, पिछले दो दिनों से जो खबरें आ रही हैं अब थोड़ी सी कॉन्क्रीट शेप ले चुकी हैं, उन पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। और आप दो दिनों से खबरें सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ भी रहे हैं और अपना मूल्यांकन भी कीजिए कि क्या आपने इसको वह महत्व दिया, इन खबरों को वो महत्व दिया। और अगर वो महत्व आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। मित्रों, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा सिसिल्स के राष्ट्रपति हमारे यहां आए हुए हैं और कल उनसे फाइनल वो हुआ है, न्यूज में भी आपने सुना। और सिसिल्स ने भारत को एक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह देने की स्वीकृति दी है और समझौते हुए हैं। अब वो छोटे छोटे समझौतों को आप छोड़ दीजिए, वो सिविल सर्विस के लिए आपकी जरूरत नहीं है। नौसैनिक अड्डा सिसिल्स, राइट। अब आप देखिए कि आपको लगेगा कि सिसिल्स तो बेकार है, कुछ छोटा सा देश है। अब कुल मिलाकर के सोचिए कि 450 स्क्वायर किलोमीटर का तो वो एरिया ही है, मतलब 20x25 किलोमीटर का वो छोटा सा देश है। वहां लगभग 100-125 आइलैंड है और मैं सिसिल्स गया हुआ हूं, बहुत ही खूबसूरत देश है। आबादी भी 1 लाख से कम ही है, 90-95 हजार की उसकी आबादी है। तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये कोई महत्व की बात है, और सेसेल्स कोई बहुत चर्चा में भी नहीं होता देश, तो आप उसको अवॉइड कर देंगे, राइट। आपने किया है या नहीं किया है देखिए। इसके बाद फिर आप मालदीव के बारे में आपने पढ़ा होगा, मालदीव में 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि कुछ टकराव जैसी खबरें आ रही हैं। और आज के अखबारों में दिया है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है कि भारत मालदीव को सामान भेजने में कुछ आनाकानी कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मालदीव की खबर, मालदीव भी बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी तो मतलब थोड़ी सी ही ज्यादा है सेसेल्स से, ये वो भी आईलैंड है आप जानते हैं। अब आपको लगेगा कि मालदीव सेसेल्स तो कोई बहुत काम के देश नहीं है, बड़े देश नहीं है। इसके बाद तीसरा जो अभी मामला चल रहा है वो नेपाल का चल रहा है, मामला नहीं चल रहा है कहना चाहिए, कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा कि चीन की यात्रा पर गए हैं, वहां उनके साथ चीन के साथ समझौता भी हुआ है। उसमें एक बहुत जो महत्वपूर्ण समझौता है वो ये है कि तिब्बत का एक स्थान है केरुंग, वहां से लेकर के और नेपाल का जो काठमांडू है वहां तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। तो भारत के लिए ये थोड़ी सी चुनौती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बहुत पुराने संबंध हैं। चीन भी बहुत ज्यादा कोशिश में है कि वो नेपाल के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए। तो ये रेल लाइन बिछ जाने से ठीक है कि वो रेल लाइन हमारे सीमा को तो स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता करने वाली बात तो होती ही है। ये नेपाल की घटना हो रही है। अब मैंने आपको तीन देशों के बारे में घटनाएं बताई। चलिए नेपाल को हम यहां अलग कर देते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अलग कर देते हैं, कस अर्थ यह नहीं कि वो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। चूंकि मैंने मुख्य विषय रखा है हिंद महासागर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि जो सेसेल्स है और जो आपका मालदीव है, ये कहां स्थित है? ये आप हमारे इंडियन ओशन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित हैं। और हिंद महासागर में जितने भी देश हैं, आप देखिए कि ज्यादातर छोटे छोटे ही देश तो हैं। भारत को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर राष्ट्र इसी तरह के छोटे 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 देश हैं। अभी तक अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं कुछ समय से, तो आपके दिमाग में यह बहुत स्पष्ट होगा कि किस तरीके से हिंद महासागर क्षेत्र में और उधर प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लगातार। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी आपने सुना होगा, 2013 में इस पर प्रश्न पूछा गया था कि बकायदे वो इन छोटे छोटे देशों में आइलैंड ले लेकर के चीन अपने वहां नेवी बेस बना रहा है, नौसैनिक अड्डे बना रहा है, और पूरी तरह से उस क्षेत्र पर उस तरह से अधिकार करने के लिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को लेकर के केवल भारत ही चिंतित नहीं है, बल्कि अमेरिका भी चिंतित है, जापान भी चिंतित है, ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है, ये देश भी चिंतित है कि अगर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इसका प्रभुत्व तो चीन का हो गया तो क्या होगा। तो बट नेचुरल है कि हिंद महासागर में वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और हिंद महासागर का मतलब, उसमें शक्तिशाली हो जाने का मतलब है कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए होगी, क्योंकि जो हिंद महासागर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है, आप कह लीजिए वाटरवे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब विश्व का एक तिहाई जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से हिंद महासागर होकर के जाता है। सोचिए कि उसमें चाइना का प्रभुत्व हो जा रहा है, दो तिहाई पेट्रोलियम हिंद महासागर में है, दुनिया भर के खनिज पदार्थ, बहुमूल्य धातु हिंद महासागर में है, प्राकृतिक संसाधन है, और भारत के बिल्कुल पड़ोस में है। तो जब आप सामरिक दृष्टि से देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे, तो भारत के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो भी चीन, जिसके साथ आप देखते हैं कि भारत के संबंध बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण तो नहीं है, एक बार युद्ध भी हो चुका है, और जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, दुनिया तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वन बेल्ट वन रोड इन सब का निर्माण कर रहा है, उसको लेकर के दुनिया आशंकित तो है चीन के प्रति। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में भारत के लिए सेसेल्स से यह समझौता हो जाना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और ठीक इसी तरह से मालदीव से, चाहे कारण कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, अगर मालदीव से हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं तो वह भी हमारे लिए चिंता पैदा करने वाली बात है। तो जब आपको इतनी समझ होगी तब जाकर के आप सेसेल्स और मालदीव की घटनाओं को महत्व देते हुए उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको नोट कर लेंगे, और तभी आप नेपाल के साथ जो अब चीन का डेवलपमेंट हुआ उसे भी नोट कर लेंगे, ताकि आपके पास एक फैक्ट हो और उस फैक्ट के आधार पर आप अपनी बात को बड़े तार्किक ढंग से रख सके। मित्रों, ये सिविल सर्विस की चुनौती है। अब सवाल यह कि या तो आप इसे जानते हो, आपके पास वो दृष्टि है कि नहीं यह मेरे लिए जरूरी है, या फिर यह है कि आप नहीं जानते। तो मित्रों, अगर जानते होंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप थोड़े से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जान रहे होंगे, जान गए होंगे, उतनी क्षमता पैदा हो गई होगी। नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपने तैयारी शुरू की है, धीरे 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 जान जाएंगे, हर चीजें धीरे धीरे ही जानी जाती हैं। और मुझे लगता है कि उसके लिए जो ये डेली ऑडियो लेक्चर है और हमारी जो क्लासेस हैं वो आपकी शायद मदद करने की स्थिति में वास्तव में है। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं आकाश कुमार निगम, राहुल शर्मा और अंबुज सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।